नमस्कार, स्पोर्ट्सकैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार को। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद आनंद।
टेनिस, एथलेटिक्स, फुटबॉल और क्रिकेट के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कार्लोस अल्काराज और यानिक सिनर के बीच मुकाबला जारी। सिनर ने जीता पहला सेट। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने 12 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीतकर अभियान का शानदार समापन किया। यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल के फाइनल में आज देर रात स्पेन और पुर्तगाल होंगे आमने सामने। और वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के साथ दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में सदी शुरुआत की। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। इस समय पेरिस में सबकी नजरें लगी हुई हैं, जहां पर दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर का सामना मौजूदा चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज के साथ हो रहा है। ताजा स्थिति यह है कि सिनर ने पहला सेट 6-4 से जीत लिया है। दूसरे सेट में 4-1 की बढ़त पर है सिनर, और ये मैच कहीं ना कहीं अब अल्काराज के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। सचिन, जब ये मैच शुरू होने वाला था तो ऐसा माना जा रहा था कि कार्लोस अल्काराज के पास एडवांटेज होगा, क्योंकि लाल मिट्टी पर बहुत अच्छा खेलते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं
जी,
और इससे पहले के जो टूर्नामेंट थे उसमें भी बढ़िया प्रदर्शन रहा।
निश्चित तौर पे एज तो उन्हीं की मानी जा रही थी, लेकिन चूंकि ये दो एक समान खिलाड़ियों का ही मुकाबला आप कह सकते हैं, एक नंबर एक है दुनिया के, एक नंबर दो खिलाड़ी हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है रैंकिंग में। जिस तरह से महिलाओं के मुकाबले में भी पहली बार ऐसा बहुत सालों बाद देखने को मिला कि नंबर एक और नंबर दो खिलाड़ी फाइनल भी थी, वैसे ही सेम जो है वो पुरुष सिंगल में हो रहा है। बात यही है कि जो खिलाड़ी शुरुआत में दबाव बनाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि अभी दोनों के पास कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। हालांकि एक के पास 4 ग्रैंड स्लैम, 3 ग्रैंड स्लैम दूसरे के पास भी हैं, सिनर के पास भी 3 ग्रैंड स्लैम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई अभी तक इनके पास कोई ऐसी विरासत है जो नडाल और फेडरर और जोकोविच के पास थी। तो ये एक तरीके से एक सिर्फ खिताब का ही मुकाबला नहीं आनंद, ये एक नए युग की शुरुआत भी है टेनिस में, जिसमें दो युवा खिलाड़ी ऐसे आमने सामने हैं जो यहाँ से एक नई एक शुरुआत डालेंगे, जो एक प्रतिद्वंदिता की नई शुरुआत होगी। तो निश्चित तौर पर इसमें यही देखने वाली बात है। आपने सही कहा कि उनको बढ़त थी अल्काराज को, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में ये भी है कि वो उतने कभी कभी इतने फोकस नहीं रह पाते हैं बड़े मुकाबलों में खासतौर से। तो सिनर के लिए अच्छी बात यही थी कि वो बैकहैंड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो वहाँ से बैक लाइन से जब वो फोरहैंड खेलते हैं वो उनकी ताकत है, तो इसका उनको फ़ायदा है। हालांकि नेट में ये माना जाता है कि वो उलझते हैं, लेकिन उन्होंने इन सब कमियों को दूर किया है। हालांकि मैं मैच लगातार टीवी पे तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जैसा भी मैंने अभी फ़ोन पे जितना भी देखा, जो समझ में आया, तो मुझे लग रहा अपनी अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं।
बढ़िया कुछ सर्विस भी की है आज के मैच में यानिक सिनर ने। सचिन, एक सवाल और जहन में आता है कि सिनर ने सेमीफाइनल में जोकोविच जैसे दिग्गज को हराया, अल्काराज को फाइनल में एंट्री तब मिली जब मुसेटी चोट के कारण अपना मैच छोड़ गए बीच में, क्या उसका भी एडवांटेज है?
नहीं, देखिए इसमें दोनों बातें, हालांकि उन्होंने माना कि अल्काराज ने मैच के बाद कि ये मैच मैं ऐसे नहीं जीतना चाहता था, क्योंकि देखिए कोई भी खिलाड़ी जो फाइनल खेलने जा रहा है वो चाहेगा कि एक कड़ी चुनौती के बाद वो वहां पहुंचे, जिससे कि अपने को वो साबित कर सके। तो एक तरीके से उनके लिए तो वो आसान हो गया कि भाई, हालांकि वो मैच काफी चल चुका था और वो बढ़त पे ही थे, ऐसा नहीं था कि वो उस मैच को वो नहीं जीत सकते थे, लेकिन फिर भी मतलब कोई भी खिलाड़ी जब सेमीफाइनल में हो खास तौर से और सामने जोकोविच जैसा आपके सामने प्रतिद्वंदी हो, तो वो चाहेंगे कि मैं इनको हरा के ही आगे बढ़ूं। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन इसका एक विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है कि अगर आपने कोई बहुत टफ मैच खेला है तो आप फाइनल के लिए शायद उस तरीके से तैयार ना उतना न रह पाए, आपके ऊपर थोड़ी थकान हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार एक अच्छा मैच चल रहा है अभी, और अभी हो सकता है कि कुछ अल्काराज की तरफ से वापसी की कुछ चीज़ें देखने को हमें मिले, क्योंकि अभी हम नहीं मान सकते, क्योंकि एक लंबा मैच होता है ग्रैंड स्लैम फाइनल, 5 सेटर गेम होते हैं ये मैच होते हैं, तो इसमें अभी एक उम्मीद जताई जा रही है कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो लगता है कि कुछ वापसी की अभी कुछ संभावना हो सकती है।
उधर कल अमेरिका की कोको गॉफ ने वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। रिपोर्ट के साथ हैं करिश्मा।
सचिन साल 2013 के बाद पहली बार फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का फाइनल दुनिया की पहली और दूसरे नंबर के खिलाड़ी के बीच खेला गया। पेरिस में खेले गए इस मैच में अमेरिका की कोको गॉफ ने 3 सेट तक चले रोमांचक फाइनल में विश्व की नंबर 1 आरियाना सबालेंका को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। 21 वर्षीय गॉफ ने पहला सेट गंवाने के बाद 2 घंटे 38 मिनट तक चले रोमांचक मैच में शानदार वापसी करते हुए 6-7, 6-2, 6-4 से जीत कर पहला रोलां गैरो खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2023 में वह अमेरिकन ओपन जीत चुकी हैं। कोको गॉफ ओपन एरा की पहली ऐसी महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने पहला सेट गंवाने के बाद 2 ग्रैंड स्लैम फाइनल में जीत दर्ज की हो। यह दूसरा मौका है जब विश्व की दूसरी वरीयता प्राप्त कोको ने सबालेंका को ग्रैंड स्लैम के फाइनल में हराया है। साल 2023 US ओपन फाइनल में भी कोको ने सबालेंका को हराया था। सबालेंका लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्लैम फाइनल हारी हैं। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल मेडिसन की से हारी थी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
हॉकी की बात करें तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने आज बेल्जियम को एक रोमांचक मैच में 3-2 से हराकर अपने यूरोपीय दौरे की विजयी शुरुआत की। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और 11वें मिनट में गीता यादव ने गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में मेजबान टीम ने वापसी करते हुए मैरी गोयन्स के 25वें मिनट में किए गोल से स्कोर बराबर कर दिया। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में बेल्जियम ने लुइस वैन हेके के 34वें मिनट में किए गोल से 2-1 की बढ़त बना ली, लेकिन भारतीय टीम ने हार नहीं मानी और 40वें मिनट में सोनम के गोल की मदद से स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद मैच के 45वें मिनट में लाल थंत लुआंगी के पेनल्टी कॉर्नर ने भारत को 3-2 से निर्णायक बढ़त दिला दी, जो जीत के लिए पर्याप्त साबित हुआ। ताइवान ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भारत ने 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 16 पदक हासिल कर अपने अभियान का शानदार समापन किया है। दूसरे दिन यानी आज किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते बता रही हैं मनीषा।
ताइवान ओपन एथलेटिक्स के दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा। 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में भारतीय पुरुष टीम ने 3:05.58 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। पुरुष टीम में संतोष, विशाल, धर्मवीर चौधरी और मनु ने नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में महिला वर्ग में अन्नु रानी ने 56.82 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुष वर्ग में रोहित यादव ने 74.42 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा के महिला वर्ग में विथ्या रामराज अव्वल साबित हुई। उन्होंने 56.53 की टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में यशास पलाक्षा ने रजत पदक अपने नाम किया। 800 मीटर दौड़ में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक पूजा के नाम रहा। पूजा ने नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए 2:02.79 की टाइमिंग के साथ पहला स्थान हासिल किया। ट्विंकल चौधरी रजत पदक जीतने में सफल रही। पुरुष वर्ग में कृष्ण कुमार ने नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाते हुए 1:48.46 की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में शैली सिंह ने रजत पदक और एनसी सोजान ने कांस्य पदक जीता। शैली ने 6.41 मीटर जबकि एनसी सोजान ने 6.39 मीटर की छलांग लगाई। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
सचिन, एशियन एथलेटिक्स के बाद ताइवान ओपन एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रैक पर बढ़िया दमखम दिखाया।
निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, 12 गोल्ड जीतते हैं किसी इवेंट में, किसी चैंपियनशिप में, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लग रहे हैं प्रदर्शन जो थोड़े से सब स्टैंडर्ड हैं। जैसे आप अगर भाला फेंक में 75 भी नहीं पार कर रहे हैं और आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंपटीशन शायद उस स्तर का नहीं था उस स्पर्धा में। लेकिन सारी स्पर्धाओं के लिए ये बात नहीं की जा सकती, क्योंकि आप 800 में रेस में और भी अन्य खिलाड़ियों ने मीट रिकॉर्ड बनाए, चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए, नेशनल रिकॉर्ड बेटर किए। कुछ पुरानी खिलाड़ी उभर, जैसे अन्नू रानी एक समय के लिए थोड़ा सा नेपथ्य में चली गई थी, लेकिन अब फिर उभर के आ रही हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, पदक तो हैं हमारे पास, अच्छा एक वहाँ से खजाना पदकों का लेके लौटेंगे हमारे एथलीट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें देखना होगा कि वो प्रदर्शन शायद उस तरीके का नहीं था। जैसे मैंने जैवलिन थ्रो का जिक्र किया कि 75 नहीं फेंकने के बाद भी गोल्ड मेडल मिला।
यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल के फाइनल में आज देर रात म्यूनिख के अलियांज अरीना में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। दोनों टीमों ने एक एक बार ये ट्रॉफी जीती है। पुर्तगाल ने 2019 में जबकि स्पेन ने 2023 में यह खिताब अपने नाम किया था। इस फाइनल में पुर्तगाल के लीजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्पेन के 17 वर्षीय युवा लामिन यमाल के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। पुर्तगाल ने जर्मनी को 2-1 से जबकि स्पेन ने फ्रांस को 5-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दोनों टीमों के बीच हुए अब तक 40 मैचों में स्पेन ने 18 जबकि पुर्तगाल ने 6 में जीत दर्ज की है। 16 मैच ड्रॉ रहे हैं। तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज ही जर्मनी और फ्रांस आमने सामने होंगे। कह सकते हैं कि रोनाल्डो अपने करियर के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं और एक उगता हुआ सूरज लामिन यमाल के रूप में। सेमीफाइनल में 2 गोल यमाल ने किए थे, रोनाल्डो की तरफ से 1 गोल आया था।
नहीं, निश्चित तौर पे देखिए ये एक मतलब कह सकते हैं आप, जो आपने अभी जैसे उपमा दी कि एक खिलाड़ी जो है वो एक सूरज जो है वो अस्त होने की ओर है और एक सूरज उग रहा है। हालांकि रोनाल्डो अभी भी पूरी तरीके से फिट हैं और ये मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत जल्दी मैदान को छोड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो अभी भी लगातार किसी भी टीम के लिए गोल स्कोरर हैं, चाहे वो क्लब हो चाहे वो देश हो, और 1000 गोल के करीब उनके पहुंच रहे हैं और देश के लिए भी वो 125 गोल से ऊपर कर चुके हैं। और ये मुकाबला जो है बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और सारी जो स्पॉटलाइट है वो इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के ऊपर है कि यमाल कैसा खेलते हैं। जैसे बताया आपने कि सेमीफाइनल में उन्होंने 2 गोल किए थे, 5-4 से जीत दिलाने में अपनी टीम को मदद करी, वो क्लब के लिए भी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्ल्ड कप के समय जब वो पहली बार लोगों की नज़र में आए थे तभी से वो सुर्खियों में है। तो जाहिर सी बात है ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे और इसी तरीके से वो अपने स्तर को बनाए रखेंगे।
क्रिकेट की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के साथ ब्रिस्टल में दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए हैं, यानी इंग्लैंड को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य मिला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की तरफ से जॉनसन चार्ल्स ने 46 और सी होप ने 49 रन की उपयोगी पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। किस तरह देखते हैं, क्या ये जो 196 का टोटल है ये पर्याप्त साबित होगा? इंग्लैंड के पास आक्रामक बल्लेबाजों की पूरी फौज है।
नहीं, निश्चित तौर पे उनके पास बल्लेबाज तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टोटल है क्योंकि 200 के पास अगर आप पहुंचते हैं तो कोई कम नहीं है ये स्कोर, अगर इनकी गेंदबाज उनको काबू करने में सफल रहे। क्योंकि आप देखते हैं कि 2020 में बड़ी जल्दी मैच का रुख भी बदलता है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ना गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा समय। अगर ये हावी हो गए शुरुआत में तो अलग बात है, नहीं तो ये मैच पूरा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए।
भारतीय ओलंपिक संघ IOA, केंद्र और गुजरात राज्य सरकारों का एक प्रतिनिधि मंडल लंदन में राष्ट्रमंडल खेल अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वापस लौट रहा है। अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार हासिल करने से संबंधित प्रक्रिया और रूपरेखा को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये बैठक की गई। प्रतिनिधिमंडल में IOA प्रमुख PT उषा और केंद्रीय खेल मंत्रालय के साथ साथ गुजरात राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने लंदन में 2 दिनों तक राष्ट्रमंडल खेल अधिकारियों से मुलाकात की। इन खेलों के लिए अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव 31 अगस्त तक पेश किए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए मेजबान शहर का चयन इस साल नवंबर में किया जाएगा। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों को अहमदाबाद में आयोजित कराने के लिए औपचारिक रूप से अपनी बोली पहले ही पेश कर दी है। बात गोल्फ की, भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए स्पेन में अबाबा टेनरिफ महिला ओपन गोल्फ के तीसरे दौर में इवन पार 72 का कार्ड खेलकर शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखा है। वो 9वें स्थान पर हैं। सचिन जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद आनंद।
तो स्पोर्ट्स कैन में आज फिलहाल इतना ही। फ्रेंच ओपन का फाइनल अब भी जारी है, यानिक सिनर अब भी बढ़त पर हैं। क्या होगा परिणाम कल के स्पोर्ट्स कैन में आपको जरूर बताएंगे। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।